नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। भाजपा ने पश्चिम बंगाल और केरलम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। लेफ्ट फ्रंट ने भी केरलम विधानसभा चुनावों के लिए पहली सूची जारी की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटें जीती। भाजपा ने ओडिशा में 2, बीजू जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती। हरियाणा में 2 सीटों पर मतगणना जारी। भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। एक और पोत नंदा देवी कल पहुंचेगा। ब्रिटेन ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की योजना पर सहयोगियों के साथ काम चल रहा है, लेकिन वो युद्ध में शामिल नहीं होगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए और राजनयिक नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन 23 मार्च तक किए जा सकते हैं। इनकी जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुलियन कंजारीपल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर निमोम सीट से मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को कजाकुटम क्षेत्र से और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन मंजेश्वर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नव्या हरिदास को कोझिकोड उत्तर सीट से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आर श्रीलेखा वट्टियूरकावु क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। एलडीएफ ने 75 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और वित्त मंत्री केएन बालागोपाल के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। 126 सदस्यीय केरलम विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम और भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल दक्षिण सीट से निवर्तमान विधायक अग्निमित्रा पॉल फिर चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटें जीत ली हैं। भाजपा ने ओडिशा में 2, बीजू जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती है। हरियाणा में 2 सीटों पर मतगणना जारी है। विजयी उम्मीदवारों में भाजपा के नितिन नवीन और शिवेश राम, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। हालांकि परिणामों की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह चुनाव हार गए हैं। संसद में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
संसद के दोनों सदनों में आज कार्यवाही सुचारू रूप से चली। लोकसभा में रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली 2026-27 की अनुदान योजनाओं पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने अपने विचार रखे। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द ही स्टैंड अप इंडिया योजना का संशोधित संस्करण लाएगी, जिससे देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने बहस में भाग लिया। शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में कथित एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने और घबराहट फैलाने का आरोप लगाया। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के बीच भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी वाहक शिवालिक द्वारा माल उतारने में देरी न हो, इसके लिए बंदरगाह पर दस्तावेजीकरण और प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि एलपीजी लेकर आ रहा एक अन्य भारतीय पोत नंदा देवी कल पहुंच जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला पोत जग लाडकी सुरक्षित स्वदेश पहुंच रहा है।
इंडियन फ्लैग वेसल जग लाडकी,
भारतीय ध्वजवाहक जहाज जग लाडकी जो 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था, लगभग 81,000 टन मुरबान कच्चे तेल के साथ भारत की ओर सुरक्षित यात्रा कर रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह कल मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा।
टुमारो एट मुंद्रा पोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहीं भी पेट्रोल की कमी की कोई खबर नहीं है। संयुक्त सचिव ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है।
हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें, उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। एक और इनिशिएटिव जो हम इस वक्त पुश करना चाह रहे हैं वो है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है, जो पहले 53% हुआ करता था, कल वो 72% था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में मौजूद लगभग 550 भारतीय नागरिक जमीन के रास्ते आर्मेनिया में दाखिल हो गए हैं, जबकि 90 नागरिक अजरबैजान में प्रवेश कर गए हैं।
We also have had 90 of our nationals.
ईरान से लगभग 90 भारतीय नागरिक सीमा के रास्ते अजरबैजान में प्रवेश कर चुके हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने उन्हें वीजा और अन्य औपचारिकताओं में सहयोग किया। ईरान से आर्मेनिया में प्रवेश करने वाले 550 लोगों के समूह में 284 लोग तीर्थयात्रा के लिए ईरान गए थे। इनमें से कुछ लोग लौट चुके हैं और अन्य अगले कुछ दिनों में लौट आएंगे। कई मुश्किलों के बावजूद तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह कार्यरत है।
कंटिन्यूज टू बी फुली फंक्शनल।
इस बीच विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि पिछले महीने 28 तारीख से अब तक खाड़ी क्षेत्र से लगभग 2,20,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से स्पष्ट समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। नागर विमानन मंत्री के रामोन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद 2,19,000 से अधिक लोग भारत आए हैं। राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री नायडू ने कहा कि उड़ानों का सुरक्षित संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता है, हवाई क्षेत्र उपलब्ध होते ही उड़ानें संचालित की गईं। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय विमानन कंपनियों ने 4,300 से अधिक उड़ानें और विदेशी विमानन कंपनियों ने 11,000 से अधिक उड़ानें रद्द की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने विदेशी मामलों की परिषद की बैठक में आमंत्रित करने के लिए यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 2026 में भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में एक नया अध्याय खुल गया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री विभिन्न समझौतों को अमल में लाने के लिए समन्वय कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में विशेष रूप से व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, आवागमन और रक्षा पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को रक्षा गोलमेज सम्मेलन 2026 के आयोजन के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्थक संवाद को बढ़ावा देती है और रक्षा व्यापार, सह विकास और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को प्रोत्साहित करती है। इसमें रक्षा अनुचर, नीति निर्माता, शिक्षाविद और भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि एक साथ आए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो से होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करने के आह्वान को ब्रिटेन और जर्मनी ने खारिज कर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि यह नाटो का मिशन नहीं है। होर्मुज जल डमरू मध्य खाड़ी का एक महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन गलियारा है। इसे ईरान ने संघर्ष के दौरान अमरीका और सहयोगी देशों के यातायात के लिए बंद कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि नाटो के सदस्य इस जलमार्ग को फिर से खोलने में सहायता करने से इंकार करते हैं तो नाटो का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की योजना पर सहयोगियों के साथ काम कर रही है, लेकिन व्यापक युद्ध में शामिल नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की मांग की थी। इस बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध के नाटो से कोई लेना देना नहीं है और ये युद्ध नाटो का नहीं है। साहित्य अकादमी ने आज 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों को साहित्य अकादमी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंजूरी के बाद दिए जा रहे हैं। पुरस्कार इस महीने के 31 तारीख को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस वर्ष 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथाएं और 2 निबंध को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही एक साहित्यिक आलोचना, एक आत्मकथा और 2 संस्मरणों को भी इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। प्रख्यात लेखिका ममता कालिया को उनकी हिंदी संस्मरण जीते जी अलबाद के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रख्यात राजनयिक नवतेज सरना को उनके अंग्रेजी उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही उर्दू कविता सफर जारी है के लिए प्रीतपाल सिंह बेताब को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। अन्य सम्मानित लेखकों में असमिया भाषा में लिखे उपन्यास करही खेलर साधु के लिए देवव्रत दास और बंगाली भाषा में लिखी गई कविता श्रेष्ठ कविता के लिए प्रसून बंदोपाध्याय शामिल हैं। सभी पुरस्कार विजेताओं को 1,00,000 रुपए की राशि के साथ एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टी प्रदान की जाएगी। सौम्य शरण के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मौसम विभाग ने कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। भाजपा ने पश्चिम बंगाल और केरलम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। लेफ्ट फ्रंट ने भी केरलम विधानसभा चुनावों के लिए पहली सूची जारी की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटें जीती। भाजपा ने ओडिशा में 2, बीजू जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती। हरियाणा में 2 सीटों पर मतगणना जारी। भारतीय पोत शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। एक और पोत नंदा देवी कल पहुंचेगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए और राजनयिक नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।